फिर कहा मांग वरदान मांग, लख तेरा तप हर साया हूँ। जो इच्छा हो वह पूर्ण करूं, बस इसीलिए यहाँ आया हूँ। बोला अर्जुन है प्रस्वाहन, एक ऐसा अस्त्र प्रदान करो, होवे नहीं जिसकी मार प्रथा, इतनी कृपा भगवान करो। वनवास पूर्ण हो जाने पर एक घोर युद्ध करना होगा, भीष्म कृप द्रोण करण आदि रणवीरों से लड़ना होगा। भगवान शिव ने अपने रूप का दर्शन कराया और कहने लगे, भक्तराज अर्जुन मांग मांग, तुझे क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, नाथ मुझको कोई ऐसा अस्त्र दें आप, क्योंकि आगे चलकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं से, कर्ण आदि भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं से मुझको युद्ध करना होगा। बस हे विश्वनाथ, मैं यही चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा अस्त्र दें जो मेरे काम आ सके। विश्वनाथ कहने लगे, सुनो पांडु सुत वीर, देता हूं तुझको सुवन पशुपति नामक तीर। मेरे पास बाणों में एक सर्वोत्तम बाण है जिसका नाम है पशुपत। ये मुझको बड़ा प्यारा है, और देख यम इंद्र कुबेर वरुण तक में भी इस बाण को छोड़कर लौटाने की क्षमता नहीं है, लेकिन तेरे पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों की वजह से मैं तुझको ये अस्त्र दे रहा हूं, और उसको चलाने की सारी क्रियाएं तुझको समझा रहा हूं। मगर एक बात सुन ले अर्जुन, पर युद्ध क्षेत्र में बार बार इस सर को मति चलाना तुम, जब प्राणों का संकट उपजे तब इसे काम में लाना तुम। बार मैं तुझको दे रहा हूं पशुपत नाम का, मगर बेटा अर्जुन इसको युद्ध के मैदान में बार बार प्रयोग मत करना। जब कभी तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाए तब इसका प्रयोग कर लेना। इतना कह करके उस तीर के सारे प्रयोग बतला दिए अर्जुन को, और उसके बाद भगवान शिव कहने लगे, लो अपना गांडीव वापिस लो। ये अपना गांडीव समस्त सरों के साथ में लो, और जा स्वर्ग में, मेरी कृपा से तू पहुंच जाएगा। मेरी आशीष है, मेरा ये आशीर्वाद है कि तू शत्रुओं को मारकर भगा देगा, और जब तक इस संसार में तू रहेगा सुख से रहेगा, तेरा नाम रहेगा। इतना कह करके भगवान शिव तो अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अर्जुन ने देखा आकाश मार्ग से ससराहट करते हुए न जाने कितने विमान अर्जुन के पास आ गए, जिसमें देखा इंद्र कुबेर वरुण, यम आदि, पता नहीं गंधर्व जैसे कितने तेजस्वी और गुणी लोग बैठे हुए हैं। आज इनको देखकर कुंती सुत अर्जुन ने लेट करके प्रणाम किया सभी को। आज सभी देवताओं ने पता नहीं कितने कितने उत्तम प्रकार के दिव्य अस्त्र अर्जुन को दिए और उनकी सारी विधियां समझाई और कहा, वीर तुम धन्य हो, धन्य हो जो तुमने भगवान शिव के दर्शन कर लिए। यूं कहे एक विमान में सामने इंद्र आए और कहने लगे, बेटा अब हम तुमको स्वर्ग धाम ले जाएंगे, मैं वहीं तुझे जो बाकी हैं वे दिव्य अस्त्र सिखलाऊंगा, इसके अतिरिक्त गान विद्या का भी कुल पाठ पढ़ाऊंगा। जितने तेरे दिव्य अस्त्र रह गए हैं रामचरण भैया, वो सब स्वर्ग ले जाकर सिखाऊंगा और वहां पर तुझे ले जाकर कुछ गाने बजाने की कला भी सिखाऊंगा, गान विद्या भी सिखाऊंगा, क्योंकि गान विद्या भी जरूरी है। यूं कह एक विमान में लिया इन्हें बैठाए, सब देवों को साथ ले चले हर्ष सुर राय, अपने विमान में बैठा लिया इनको। एक लोक, दो लोक, कई लोकों को घूमते हुए आज इंद्रलोक में अर्जुन का विमान पहुंच गया। चलते चलते इंद्र के महल द्वार के पास जा पहुंचे सानंद से पांडु सुवन गुणरास। सबसे पहले गए, शिष्टाचार किया, माता इंद्राणी सामने आ जाती है। महलों में जाते अरे ही पहले इंद्राणी को मस्तु तक नाया, तलत बिस राम किया फिर मन माना भोजन खाया, गुरुओं का हाल लगे कहने तूने में निशिचा कर छाई, जब दिव्य सेज पर अर्जुन ने सोने की मन में ठहराई, आज आराम से दिव्य सेज पर सोते हैं। सवेरा जब हुआ तो अर्जुन इंद्र की स्वर्ग की मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। लौट कर जब आए तो इंद्र ने अर्जुन को अपने पास बुलवाया। सुनते ही अर्जुन पहुंचे और जा करके इंद्र को प्रणाम करते हैं। इनको देख करके इंद्र प्रसन्न होकर कहता है, बेटा अर्जुन हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज के दिन का बड़ा प्यारा मुहूर्त है, इसलिए आज से ही तुम सारी विद्या का पढ़ना आरंभ करो। इतना कह करके गुढ़ाति गुढ़ अनेकानेक दिव्य अस्त्रों का अध्ययन आज जो है उनको कैसे चलाया जाता है, कैसे वापस लिया जाता है, इन सारी कलाओं को महाराज देवाधिदेव इंद्र अर्जुन को ज्ञान कराने लगे। आखिर एक दिन ऐसा आया कि सभी सरों का ज्ञान अर्जुन को करवा दिया। इस तरह पार्थ को धनुर्वेद विद्या में पूर्ण बनाए दिया, विद्या में पारंगत कर दिया। एक रोज इन्हें खुश करने को उत्सव करने की ठहरा कर सुरपति ने स्वर्गवासियों को सूचित कीन्हा अति हर्षा कर। एक दिन की बात है, महाराज इंद्र ने सोचा भाई अर्जुन हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, और देखो भैया जब मेहमान कोई आता है तो उसकी मेहमान नवाजी तो की ही जाती है, मेहमान नवाजी भी कई प्रकार की होती है। भैया पहले दरवाजे पर जब मेहमान आता था तो लोग बड़ा खुशियां मनाते थे, या हा 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 मेहमान आ गया। मेहमान का मतलब आप समझते हैं, अगर हमें ये मालूम है कि अभिलाख सिंह जी या राम शरण जी आज हमारे यहाँ आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, तो आप हमारे मेहमान नहीं हुए। मेहमान का मतलब क्या है, बिना तिथि के जो आ जाए उसे मेहमान कहते हैं, उसे मेहमान कहते हैं। आ जाए उसे मेहमान कहते हैं, और जो कमजोरों में झुक जाए, जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, उसे बलवान कहते हैं। और ना सुतता भी ब्राधु जिस घर में उसे समसान कहते हैं, सुतता भी ब्राधु जिस घर में उसे समसान कहते हैं, मदद करता गरीबों की, मदद करता गरीबों की उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। सताता है गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पहले जब दरवाजे पर मेहमान आता था तो लोग ये समझते थे कि जैसे ईश्वर आ गया, भगवान आ गया। और आजकल, आजकल की बात तो मत पूछो राठौर भैया, जानते क्या होता है, अब ये आप जाने होता है या नहीं होता है, मगर क्या होता है, बाहर घर वाली चिंतित है,
घर वाली चिंतित है, आफत आई है कमरे में। बाहर घर वाली चिंतित है, आफत आई है कमरे में।
प्रेमचंद भैया,
अंदर घर वाली कहती है लग जाए आग इस चूल्हे में। बाहर घर वाली चिंतित है, आफत आई है कमरे में। अंदर घर वाली कहती है लग जाए आग इस चूल्हे में। मगर
तालियां हमेशा दो हाथों से बजती हैं, एक हाथ से नहीं।
अगर भैया पहले जैसे मेजवान नहीं रह गए तो अब पहले जैसे मेहमान भी कहाँ रह गए। आजकल तो अजीब किस्म के मेहमान आएंगे पुत्तूलाल। अपने घर में चाहे भैया गर्म पानी ना पाते हो, मगर जब मेहमानी में जाएंगे हमको बोतल चाहिए, बोतल ठंडी वाली। क्या है? अरे ऐसी ऐसी फरमाइश करेंगे बेचारे घर वाले को पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर में चाहे सरी दाल न पाते हो, लेकिन जब मेहमानी में जाएंगे तब कहेंगे हम अरहर की दाल नहीं खाते, हम उड़द की दाल नहीं खाते। बेचारा मेजबान परेशान हो जाए। ऐसी ऐसी फरमाइशें की जाएंगी घरवाला पूरी नहीं कर पाएगा। चलो वो भी गलीमत है। आजकल तो और बड़ा अजीब अजीब मेहमान देखे गए। ऐसे ऐसे मेहमान भैया, रात को मेहमान आए, बेचारे मेजबान ने लुटिया दी, कुटिया दी, खटिया दी, मचिया दी। सवेरा हुआ, देखा मेहमान तो गायब ही है, साथ में भैया पुत्तूलाल, लुटिया कुटिया खटिया सब कुछ गायब। बताओ कौन ऐसे मेहमानों की मेहमान नवाजी करेगा। लेकिन भैया मेहमान भी अगर वैसे नहीं है तो मेजबान भी वैसे नहीं है। आजकल जानते हो कैसे लोग हैं मेहमान की खातिरदारी करने वाले। एक श्रीमान जी के यहाँ एक मेहमान आ गया। बड़ा बेचारे मेहमान की खातिरदारी वो किया करते थे। ठंडक के दिन थे, मेहमान से कहने लगे घर वाले, चलो मेहमान जी होटल में खाना खाया। में पहुंच गए दिल्ली की किसी होटल में, नीलम स्टूडियो से निकलकर पहुंचे। दुकानदार से कहा भैया तुम्हारी रोटियां बढ़िया हैं। अरे उसने भी कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं, हमारी रोटियां साहब बिल्कुल मक्खन की तरीके से मुलायम है। क्या कहना? मेजबान कहने लगा मेहमान पुत्तूलाल देखो कितना झूठ बोल रहा है ये दुकानदार, कहता है कि इसकी रोटियां मक्खन की तरीके से मुलायम है। अरे ये कितना भी सच बोले, इसकी रोटियां मक्खन जैसी तो हो ही नहीं सकती, हम इसकी बात में क्यों आए। चलो हम रोटियों से बढ़िया चीज मक्खन खाएंगे, इसकी रोटियां नहीं खाएंगे। मेहमान चल दिया। मक्खन वाले की दुकान पे पहुंचे, बोले ए भैया तुम्हारा मक्खन शुद्ध और ताजा है। आई पुत्तूलाल, वो कहने लगा दुकानदार कि अरे सरकार हमारे मक्खन की बात आप पूछ रहे हैं, हमारा मक्खन गंगा जल की तरीके से पावन और पवित्र और शुद्ध और ताजा है। कहा देखा देखा रामशरण भैया, अभिलाष भैया कितना झूठ बोल रहा है ये। प्रेमचंद कहता है, ये कहता है प्रेमचंद कि इसका मक्खन जो है बिल्कुल मुलायम है, गंगा जल जैसा कोई नहीं सकता। चलो मेहमान जी हम गंगई जल पियेंगे। ले गए गंगा के किनारे, कड़ी ठंडक में एक बाल्टी मेहमान को ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पिलाया। मेहमान सीधे परलोक सिधार गया। तो सज्जनों तात्पर्य कहने का यह है, आज महाराज इंद्र के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं कौन? अर्जुन। महाराज इंद्र ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, सारी अप्सराओं को बुलाया है नृत्य गान करने के लिए। महाराज इंद्र के आदेश पर आज सारी अप्सराएं अर्जुन के सामने नृत्य कर रही हैं, और ऐसी अप्सराएं जिनको देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि मोहित हो जाएं, अपनी इंद्रियों पर काबू छोड़ दें। मगर आज अर्जुन बड़ा देख रहे हैं अजीब ढंग से, कितना सुंदर यहाँ का स्वर्ग का भाई इंतजाम है, तो देख तो सबका नाच रहे हैं, मगर इनके दिल की भावना गंदी नहीं है, कामुक नहीं है। देखो भैया, भावना अलग अलग होती है। बाबा तुलसीदास ने भी मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे कीतिन तैसी, सब लोग समझ रहे हैं कि अर्जुन अप्सराओं को देखकर मोहित हो गए हैं, लेकिन अर्जुन आज कामुक भाव से नहीं, सबको एक निष्काम भाव से, मन में कोई कामुक भावना नहीं है, बड़े प्रेम से नाच देख रहे हैं। भाई अंतर तो भावना ही का है, जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु का वैसा ही स्वरूप देखता है। एक वैश्या का नाच हो रहा था एक जगह, बहुत सारे लोग देख रहे थे। वहां पर एक पान वाला था, वो कभी नाच नहीं देखता था, लेकिन जो भी नाच देखकर आता था उससे पूछता जरूर था, भैया क्या देख रहे थे? तो जो देखता था अपनी भावना के हिसाब से बताता था। तो पहले कुछ बच्चे आए, पान वाले ने पूछा, ए भैया बेटा तुम वहां क्या देख रहे थे जहां नाच हो रहा था? लड़कों ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम पान वाले, वहां पर हम तिग्धिन देख रहे थे। उनकी निगाह में तिग्धिन था। उसके बाद कुछ जवान लोग आए, रामशरण भैया, कहा आप क्या देख रहे थे? है कहा, हम तो बातुर का नाच देख रहे थे प्रेमचंद जी। उसके बाद कुछ बूढ़े लोग आए, कहा भैया तुम क्या देख रहे थे? कहा हम तो पतुरिया का नाच देख रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। अंत में एक साधु आए, पान वाले ने कहा, बाबा तुम साधु आदमी, तुम वहां क्या देख रहे थे? अरे कहा बेटा हम क्या बताएं, हमने वो देखा जो दुनिया में कहीं नहीं देखा। कहा क्या देखा बाबा? कहा हमने देखा कि खूब लोगों को गालियां दी जा रही थी और लोग बड़ा खुश हो रहे थे। अरे यही सिद्धांत अगर अपने घर में बना लें तो घर घर में काहे झगड़ा हो, गालियां सुने और गुस्सा ना हो। कहा बाबा कैसे? कहा बेटा हमने देखा कि एक जगह पे कुछ लोग मिलकर एक राण को नचा रहे हैं। वैश्या राण होती है, सभी पति और फिर कोई नहीं पति, भाई जो भी जाए तो रुपए के पति हैं, जिसके पास रुपया वही पति और जिसके पास रुपया वही जति। तो आज कहा कुछ लोग मिलकर एक राण को नचा रहे हैं, मिलकई एक राण नचावती हैं। कहा फिर? कहा वहां पर ढोलक बज रही है, ढोलक तो जानते हो पुतलाल, तबला बज रहा है। तबला क्या बोलता है? कि मृदंग कहती है तब तिन से, कि धिक है तिनको, धिक है तिनको। वहां पर तबला बज रहा है बेटा पान वाले, वो कहता धिक्कार है तिनको, धिक्कार है, धिक्कार है तिनको, धिक्कार है, धिक्कार है तिनको, धिक्कार है। तो जब तबला कहता है धिक्कार है तिनको, धिक्कार है, लल्लन भैया तो मजीरे तुम्हारे क्या पूछते हैं? मंजीरक, जरा बजा के सुना दो लल्लन भैया मजीरे, कि मंजीरक पूछत और हैं तीन से, मंजीरक पूछत अरे हैं तीन से, कि किन कऊ किन को, किन कऊ किन को। जब तबला कहता है धिक्कार है तिनको, धिक्कार है, धिक्कार है तिनको, धिक्कार है, तो मजीरे पूछते हैं तबले से, ये भैया किनको धिक्कार है, किनको धिक्कार है, किनको धिक्कार है? तब किनको धिक्कार है पुतुलाल, किनको धिक्कार है? तुमको नहीं, वैश्या तब हाथ उठाई कहे, तब हाथ उठाई कहाई, इनको 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 इनको, सब हाथ उठाई कहाई इनको 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 तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सभी समझ रहे हैं अर्जुन अप्सराओं पर मोहित तो हो गए, मगर वहां तो कुछ उल्टा ही था, अप्सराएं उल्टा अर्जुन पर मोहित हो रही थी, जबकि वो अप्सराएं जो बड़े बड़े नर मुनि गंधर्वों से बात करना भी पसंद नहीं करती, लोग बात करना चाहते हैं मगर वो बात नहीं करती, मगर वही बार बार अप्सराएं अर्जुन की तरफ अपनी निगाहें टिका देती हैं। और एक का तो हाल ही बुरा है भैया राम शरण जी, क्या बताएं आपसे उसका हाल। एक जो स्वर्ग में सबसे सुंदर अप्सराओं की रानी थी समझ लीजिए आप, इसका नाम था उर्वशी, उसका तो अर्जुन को देखकर हाल ही बुरा है। आज मुग्ध हो गई देखकर श्री अर्जुन की शान, भारे भारत देश महान, भूल गई कुछ देर के लिए नाच और गान। भारत देश के रहने वाले अर्जुन अपनी सुंदरता का डंका स्वर्ग में भी बजाए। उर्वशी जो सबसे सुंदर अप्सरा है, जिस समय वो स्वर्ग में देखती है अर्जुन को, मुग्ध हो गई, नाच गाना भूल कर खड़ी हो गई अर्जुन के सामने, और राम शरण भैया बस देखने लगी, निगाहें नहीं उठा रही है। जब थोड़ी देर के बाद ध्यान आया, अरे ये तो नाच कला में विघ्न हो रहा है, कहीं महाराज इंद्र देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो फिर नाचने लगी। लेकिन प्रेमचंद जी, नाच तो रही है मगर उसका दिमाग कहीं और है, ताल बदल जाती है, स्वर बदल जाते हैं, ढंग बदल जाता है। घबरा गई बिचारी, बहुतेरा चाहा लेकिन दृष्ट नहीं हट रही है, अंत में मजबूर होकर कि कहीं नाराज ना हो जाए इंद्र जी, उनसे आज्ञा लेकर अपने कमरे में चली गई। तब ये आज्ञा मांग कर चली गई निज धाम, नित व्याकुल रहने लगी तज कर सब आराम। अर्जुन के विरह में आज जाकर एक एक दिन अपना सालों के समान काटने लगी। उधर महाराज इंद्र विचार करते हैं, अर्जुन को हमने सारे अस्त्र शस्त्र तो सिखा दिए हैं, अब जो है इसको थोड़ा गान विद्या भी हम सिखवा दें और फिर इसके बाद इसको वापस भेज दें।